क्या है इंसान के लिए के अपने वालिदैन का ख्याल। अच्छा, यहां पर आके देखिए, इसकी अगर आप थोड़ी सी गहराई में जाइए, यानी कि ये अजीब चीज है। पहली चीज क्या है? बच्चों को सिखाना खुदा का ख्याल। दूसरी चीज क्या सिखाना है? वालिदैन का ख्याल, यानी किसने तुम्हें पैदा किया और वो कौन है जो तुम्हारी पैदाइश का वसीला बने। जब तक इंसान इन दो हकीकतों का एहतराम करना नहीं सीखता, जब तक इंसान इन दो मकामात पर बाअदब होने की तालीम नहीं हासिल करता, वो इंसान जिंदगी में कुछ नहीं बनता। यानी उसे पहचानो कि जिसने तुम्हें खल्क किया और उसके साथ किसी को शरीक न करार दो। अमलन, अमलन, ये मैं फिर बात कर रहा हूं कि शिर्क ना करना अमल है, ये कोई थ्योरेटिकल बहस नहीं है। यानी अपनी जिंदगी में ये चीज होगी कि हम मिसाल के तौर पर कि अगर हम इस बात के कायल हो रहे हैं कि फला इंसान के कहने की वजह से मेरा काम हो रहा है, ये शिर्क है। या अगर हम इस बात को समझ रहे हैं कि नहीं, अगर किसी इंसान की वजह से मेरा काम हो रहा है तो ये वो वसीला है जो खुदा ने करार दिया मेरे मेरे लिए, ये शिर्क नहीं है। तो ये ना, इस पर यानी कि इंशाल्लाह अगर आप लोग कहेंगे तो इस पर और तफसील से बात कर सकते हैं हम शिर्क पे। पहली तालीम बच्चों को ये देना है, अपने खालिक को पहचानो, उसके साथ शिर्क ना करो। दूसरी तालीम, जिन जो हस्तियां तुम्हारी पैदाइश का वसीला बनी उनके सामने बाअदब होना सीखो। देखिए, इसमें एक बड़ी गहरी बात पोशीदा है। आमतौर से वालिदैन की खिदमत का जब मरहला आता है जिंदगी में, वो उस वक्त आता है कि जब औलाद ताकतवर हो जाती है, वालिदैन कमजोर हो जाते हैं। यानी जब तक औलाद परवान चढ़ रही होती है, उस वक्त तक वालिदैन की खिदमत इतनी सिग्निफिकेंट नहीं होती, क्योंकि वालिदैन खुद अपने देखभाल करने के काबिल होते हैं, और इवन वो औलाद की कहीं ज्यादा खिदमत कर रहे होते हैं बजाय इसके कि औलाद उनकी खिदमत करे। तो इसमें एक और बेहतरीन नजरिया पोशीदा है कुरान करीम ने, जिसकी तालीम दी है। वो नजरिया क्या है कि जो भी तुम्हारे सामने कमजोर हो, उसको उसकी फिजिकल कमजोरी की वजह से बेइज्जत नहीं करना है कभी। यानी इसके अंदर, और अगर आपको याद हो सूरह अल फजर की आयतों में कि यतीम के बारे में क्या कहा है, सूरह अल फजर की आयत में, यतीम का क्या नहीं करते तुम, इकराम नहीं करते, इकराम। और ये बहुत खूबसूरत जुमला है। इकराम का मतलब क्या होता है? इकराम का मतलब होता है इज्जत देना, बुलंद करना। खुदा इस चीज को नहीं कह रहा कि यतीम को खाना नहीं खिलाते, वो मिस्कीन के वाले से है, यतीम को इज्जत नहीं देते। यानी इस्लामी माशरा, ये इस्लामी तर्ज फिक्र ये नहीं है कि जो कमजोर है उसको रोनते हुए चले जाओ, जो कमजोर नजर आए उसको एक्सप्लॉइट करो। अब वालिदैन, यानी मिसाल के तौर पर कि जैसे इन माशरों में कि वालिदैन अब हमारी खिदमत के काबिल नहीं रहे, अब उनको ओल्ड हाउसेज में भेज दो, अब बोझ है हमारे ऊपर, नहीं। तो दूसरी चीज क्या सिखाना है, और इससे पूरा एक यूं समझ लीजिए कि पूरी एक फिलॉसफी जनरेट होती है। वो फिलॉसफी क्या है कि जो कमजोर है उसको इज्जत देना है। और वालिदैन का मामला सिर्फ कमजोरी का नहीं है, बल्कि वालिदैन का मामला एहसान अजीम का है कि खुदा के बाद, पैगंबर के बाद, इमाम के बाद, जिस हस्ती का सबसे बड़ा एहसान है इंसान पर, वो कौन है? वालिदैन। ठीक है, और ये आप लोगों ने यकीनन वो सुना भी होगा इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से, किसी ने आगे पूछा कि मैंने, मेरी वालदा बहुत बीमार है, मैं उसके लिए बूढ़ी है, मैं उसके लिए फला काम करता हूँ, फला खिदमत, फला खिदमत, तो यमना रसूलल्लाह, क्या मैंने उसकी नेकी का हक अदा कर दिया? جو ان نے میرے ساتھ کی تھی، بچپنے میں پرورش کی تھی. امام علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ ایک رات کی خدمت کا بھی حق ادا نہیں ہوا ماں کی. اب یہ دلیل ہے، یعنی دین میں سب سے بڑی خوبصورتی کیا ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ دین میں خوبصورتی یہ ہے کہ دین دعووں پر مبنی نہیں ہوتا، دین دلیل پہ مبنی ہے. یعنی دعویٰ بے دلیل دین میں نہیں پایا جاتا، یعنی اونلی اے کلیم. امام علیہ السلام نے پھر اس کی وجہ بیان فرمائی. وجہ آپ نے بیان فرمائی کہ جب تیری ماں تیری پرورش کر رہی تھی تو ہر وقت تیری زندگی کے لیے آرزو مند ہوتی تھی اور دعا کرتی تھی. آج تو اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے یہ سوچ کے کہ یہ کل ختم ہو جائے گی اور کتنے دن اس کی زندگی کے رہ گئے. تو اس کی حیات کا متمنی نہیں ہے، اس طریقے سے تو اس کی خدمت نہیں کر رہا کہ جیسے اس نے تیری طرح بچپن میں کی تھی، کہ ہر یعنی اپنی زندگی کو تجھ پر نثار کر رہی تھی کہ تو زندہ رہے، تم پھلو پھولو، تم اس طریقے سے نہیں خدمت کر رہا. تو یعنی وہ بیسک کنسپٹ ہے جو ہر عمل کی قدر و قیمت کو بیان کرتا ہے. یہ دوسرا پہلو. کہ اور اس کے بعد پھر اس کو یاد دلایا کہ تم، اور خاص طور سے ذکر پھر ماں کا آیا کہ جس نے اتنے عرصے تک تم کو اپنے شکم میں رکھا، اپنے وجود سے پوری انرجی توانائی تم پر صرف کی، اور وہ ساری چیزیں. پھر اس میں ایک کورولری ہے، مطلب ایک اور کلاز ہے. وہ کلاز کیا ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. یعنی ماں باپ کی خدمت اور اطاعت اللہ کی بندگی کے انڈر میں ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیزیں آسان نہیں ہیں، مطلب اس کو سکھانے کے لیے کتنی دقت کرنی ہوگی، اور سب سے پہلے خود عمل کر کے دکھانا ہوگا کہ اگر وہ اس بات کی کوشش کریں کہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک قرار دے دو جس کی تمہیں کوئی خبر نہیں ہے، فلا تطعہما، اس جگہ پر اطاعت نہیں ہے ان دونوں کی. تطعہما ہما انہیں دونوں کی، کہ جب وہ دونوں یہ بات کریں وہاں پر نہیں. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، اور ایون دین، یعنی کہ اس کا مطلب کہ قطع تعلق کر کے چھوڑ دو انہیں، بلکہ دنیا کے اندر ان کی مصاحبت کرو، ان کے ساتھ رہو نیکی کے ساتھ. معروف یعنی معروف نیکی کو اس عنوان سے کہتے ہیں کہ جو چیز کہنے میں دیکھنے میں ظاہراً اچھی ہو، بھلی ہو، یعنی ظاہری طور سے اچھائی اور بھلائی کے طریقوں سے دنیا کی زندگی میں ان سے مصاحبت کرو. واتبع سبیل من اناب الی، لیکن اس رستے پر چلو جو تمہیں مجھ تک پہنچائے. ٹھیک ہے، میں آگے نہیں جاتا، جیسے ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا تھوڑا ہی رکھیں گے، لیکن ابھی یہ نصیحتیں پوری نہیں ہوئی ہیں، وصایا لقمان ختم نہیں ہوئے. لیکن ہم یہ بات بیسیکلی عرض کرنا چاہ رہے تھے کہ آپ دیکھیں کہ تربیت اولاد کے حوالے سے کہ انسان اور بچہ جو ہے کہ جب اس میں یہ جذبہ شکر گزاری پیدا اپنے خالق، خالق حقیقی اور خالق ظاہری، وسیلہ خلقت، خالق حقیقی اور جو انسان خلقت کا وسیلہ بنے ہیں، جب تک ان کے لیے شکر گزاری کے جذبات پیدا نہیں ہوں گے، ان کے سامنے ادب والی کیفیت نہیں آئے گی انسان کے اندر، وہ انسان کبھی بھی زندگی میں یعنی کہ دینی بنیادوں پر اس کی زندگی پرواہ نہیں چڑھ سکتی. تو آپ اس بات پہ غور کر رہے ہیں کہ اخلاق بعد میں، نماز بعد میں، عبادات بعد میں، پہلی چیز کیا ہے؟ یہ بیس ہے کہ ان کیفیات کو جب تک ہم اپنی اولاد کو منتقل نہیں کریں گے کہ ان کے اندر خدا اور خدائی حقیقتوں کے حوالے سے محبت پیدا ہو. یعنی جیسے اس حوالے سے میں ایک چیز ریکمینڈ کروں گا کہ جس سے الحمدللہ مجھے بہت فائدہ ہوا، اگینسٹ آل پرابلمس वो क्या थी कि अपने मतलब अपने घर वालों को ज्यारतों पे ले जाना, कि जब ये बच्चे बड़े हो रहे थे तो तकरीबन हम 4 साल मुसलसल ज्यारतों पे गए, और उससे इतना अच्छा मैं देखता हूँ कि इतना अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह खुदा की बहुत ज्यादा मेहरबानी है कि इतने अच्छे असरात उसके बरामद हुए। क्योंकि इमाम अलैहिस्सलाम के उन मकामात की एक बहुत बरकत है कि उस जगह पे जाना। अच्छा, और जाना, मैं एक चीज और आपको रिकमेंड करूंगा हमेशा, कि जब भी आप वहां जाएं तो अपने दिमाग पर कोई बोझ ला के ना ले जाइएगा कि आपने ये मफाती रखी हुई है, अब इतनी सैकड़ों रकातें नमाज पढ़ना है और इतनी सारी ज्यारतें पढ़ लेना है। नहीं, बिल्कुल इस तरीके से जाएं कि जैसे कोई अपने मोहब्बत करने वाले से मुलाकात के लिए जाता है, और इस तरीके से वहां जाके रहें कि आप गोया उस जगह में रहने को एंजॉय कर रहे हैं, यानी आपको कोई ऐसी हस्ती नसीब हो गई है कि जिससे आप अपना हाले दिल कह सकते हैं, जिसके साथ आप बात कर सकते हैं, जिससे अपने दिल की गुजारिशात अर्ज कर सकते हैं। इस तरीके से जाए तो बहुत ही अच्छी कैफियत, और खास तौर से कि बच्चे जब, यानी जाहिर है हमारे दिलों पे तो ना मालूम कितनी स्याही आ चुकी है, पड़ चुकी है, लेकिन बच्चों के दिल दिमाग जो है ना ज्यादा रिसेप्टिव होते हैं, ज्यादा पाकीज़ा होते हैं, उनमें खराबी कम होती है। तो अगर छोटी एज में जैसे कि वहां जाएं, उन असरात को जज्ब करें, महसूस करें, और वो सारी चीजें देखें, या इसी तरीके से कभी बच्चों को यह आदत पड़ जाए। अब जैसे बड़े बेटे को माशाल्लाह वो आदत पड़ गई ज़ियारत आशूर, मैंने कहा हम जिंदगी भर तो मैं नहीं छोड़ रहा उसको, यानी कि ये वो बरकात हैं कि जो इंसान लेकर आ जाता है ऐसी जगहों से, और खास तौर से बच्चों के जो मतलब जिसे कह लें ना कि लतीफ और ज्यादा पाकीज़ा और ज्यादा असर कबूल करने वाले नफूस होते हैं। तो इस हवाले से कि जब तक इंसान अपने खालिक और वालिदैन के हवाले से अदब करने वाला, मोहब्बत करने वाला, तमीज अख्तियार करने वाला नहीं बनता, उसकी कोई नेकी फायदेमंद नहीं है। ठीक है, आई थिंक मैसेज रिसीव्ड इंशाल्लाह। और इसी हवाले से कि जब हम, यानी कि यही चीज है कि हम जब एक बातें अपने कुछ रिवायात के हवाले से बयान करते हैं, अपने तौर तरीकों के हवाले से देखते हैं, चीज़ें कुछ और होती हैं, लेकिन जब हम कुरान और मासूम की तरफ रुजू करते हैं तो अक्सर